अब आप रजनीश कुमार यादव बीए पार्ट थ्री कला संकाय के आवाज में छायावाद नामवर सिंह के ऊपर उनकी व्याख्यात्मकता को सुनेंगे। पहले भूमिका। यह निबंध छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छायाचित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए लिखा गया है। स्वानुभूति कल्पना, प्रकृति का मानवीकरण, आध्यात्मिक छाया, मूर्तिमत्ता, लाक्षणिक विचित्रता आदि छायावाद की विशेषताएं कही जाती हैं, किंतु आलोचकों के विवेचन से कहीं यह स्पष्ट नहीं होता कि छायावादी स्वानुभूति संतों भक्तों के आत्मनिवेदन से किस बात में भिन्न है। छायावादी कल्पना में प्राचीन कवियों की अप्रस्तुत विधायिनी कल्पना से क्या विशेषता है? प्रकृति का मानवीकरण करने में छायावाद ने संस्कृत कवियों से कितनी अधिक स्वच्छंदता दिखलाई है? छायावादी रहस्यवाद और संतों भक्तों के आध्यात्मवाद में क्या अंतर है? छायावादी मूर्तिमत्ता में प्राचीन कवियों के दृश्य चित्रण से क्या नवीनता है? और छायावाद की लाक्षणिकता में ऐसा क्या है जो संस्कृत काव्यशास्त्र की सीमा में नहीं आ सकता? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर बिना छायावाद के काव्य सौंदर्य का कोई विवेचनपूर्ण नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ये सभी विशेषताएं कमोबेश कहीं न कहीं अत्यंत अन्यत्र भी मिल जाती हैं, लेकिन एकत्र ही छायावाद के अतिरिक्त किसी एक युग के काव्य में इतनी प्रचुरता के साथ नहीं मिलती। इसका अर्थ यह है कि स्वानुभूति कल्पना, प्रकृति का मानवीकरण आदि में कोई कार्य कारण संबंध है और ये किसी एक ही मनोवृत्ति की तर्कसंगत परिणति हैं। इस मनोवृत्ति को ठीक ठीक समझे बिना छायावाद के किसी विवेचन में सुसंगति और व्यवस्था नहीं आ सकती। इसलिए इस निबंध में छायावाद के केंद्र बिंदु भाव प्रबलता से प्रेरित स्वच्छंद कल्पना पर विस्तार से विचार किया गया है। आरंभ में सामाजिक पृष्ठभूमि देकर फिर किसी काव्य प्रवृत्ति पर विचार करने से कोई बात नहीं बनती। इससे पुस्तक पाठक और लेखक के साथ ही उस कविता पर भी भार बढ़ जाता है। सामाजिक सत्य कविता से खोज निकालने की चीज है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। काव्यगत सामाजिक सत्य को तत्कालीन सामाजिक आधार के साथ मिलाकर देखने का सवाल तो उसके बाद उठता है। इसलिए इस निबंध में सामाजिक पृष्ठभूमि का स्वतंत्र अध्याय खोजने वालों को निराश होना पड़ेगा। छायावाद के काव्य सौंदर्य के विवेचन से स्पष्ट है कि यह सारा सौंदर्य व्यक्ति की स्वाधीनता की भावना से उत्पन्न हुआ है और वह स्वाधीनता भी व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण समाज की स्वाधीनता की अभिव्यक्ति है। परंतु इस काव्यगत स्वाधीनता को तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम के साथ मिलाकर देखने से पता चलता है कि छायावाद में स्वाधीनता संग्राम के कुछ पहलू छूट गए हैं और कहीं कहीं छाया भी बहुत धुंधली और मूल से चली गई है। फिर भी छायावाद की कविता से राष्ट्रीय जागरण का पर्याप्त आभास मिलता है। इस राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप संपूर्ण भारत में रोमांटिक काव्य की लहर दौड़ गई थी, जिसका एक अंग हिंदी का छायावाद भी है। छायावाद की कविताएं अपने पीछे एक विशाल परिदृश्य का पता देती हैं। छायावाद में जो सार्वभौम और शाश्वत तत्व दिखाई पड़ते हैं, वे सौंदर्य शास्त्र के किसी अलौकिक नियम से नहीं आए हैं, बल्कि उसके ऐतिहासिक कार्यों के ही पुरस्कार हैं। निबंध के प्रथम अध्याय में छायावाद का इतिहास बतलाते समय कुछ नई सामग्री दी गई हैं, जिसमें मुकुटधर पांडे का लेख हिंदी में छायावाद 1920 बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख की सूचना के लिए मैं भाई श्री नारायण पांडे का कृतज्ञ हूँ। पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय आदरणीय श्री जगत शंखधर को है। उनके स्नेह की तुलना में आभार बहुत कम है। डॉक्टर नामवर सिंह, नवंबर 1954। छायावाद की भूमिका में प्रथम शीर्षक है प्रथम रश्मि। छायावाद का आरंभ सामान्यतः 1920 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं से पता चलता है कि 1920 तक छायावाद संज्ञा का प्रचलन हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 की जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर की श्री शारदा जो जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से चार निबंधों की एक लेखमाला छपवाई थी। जब तक किसी प्राचीनतर सामग्री का पता नहीं चलता, इसी को छायावाद संबंधी सर्वप्रथम निबंध कहा जा सकता है। हिंदी में उसका नितांत अभाव देखकर मुकुटधर जी ने इधर उधर की कुछ टीका टिप्पणियों के सहारे वह निबंध प्रस्तुत किया था। इससे स्पष्ट है कि उस निबंध से पहले भी छायावाद पर कुछ टीका टिप्पणियाँ हो चुकी थी। लेखमाला के प्रथम निबंध कवि स्वातंत्र्य में मुकुटधर जी ने रीति ग्रंथों की परतंत्रता से मुक्त होकर कविता में व्यक्तित्व तथा भाव, भाषा, छंद, प्रकाशन, रीति आदि में मौलिकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूसरा निबंध छायावाद क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। आरंभ में ही लेखक कहता है, अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। फिर भी छायावाद एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ऐसी रचनाओं में शब्द अपने स्वाभाविक मूल्यों को खोकर सांकेतिक चिन्ह मात्र हुआ करते हैं। छायावाद के कवि वस्तुओं को असाधारण दृष्टि से देखते हैं। उनकी रचना की संपूर्ण विशेषताएं उनकी इस दृष्टि पर ही अवलंबित रहती हैं। वह क्षण भर में बिजली की तरह वस्तु को स्पर्श करती हुई निकल जाती हैं। अस्थिरता और क्षीणता के साथ उसमें एक तरह की विचित्र उन्मादकता और अंतरंगता होती है, जिसके कारण वस्तु उसके प्रकृति रूप में नहीं किंतु एक अन्य रूप में दिख पड़ती है। उसके एक अन्य रूप का संबंध कवि के अंतर जगत से रहता है। यह अंतरंग दृष्टि ही छायावाद की विचित्र प्रकाशन रीति का मूल है। इस प्रकार मुकुटधर जी की सूक्ष्म दृष्टि ने छायावाद की मूल भावना आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि को पहचान लिया था। जब उन्होंने कहा कि चित्र दृश्य वस्तु की आत्मा का ही उतारा जाता है, तो छायावाद की मौलिक विशेषता की ओर संकेत किया। छायावादी कवियों की कल्पना प्रियता पर प्रकाश डालते हुए मुकुटधर जी कहते हैं, उनकी कविता देवी की आंखें सदैव ऊपर की ही ओर उठी रहती हैं। मर्त्य लोक से उसका बहुत कम संबंध रहता है। वह बुद्धि और ज्ञान की सामर्थ्य सीमा को अतिक्रम करके मन प्राण के अतीत लोक में ही विचरण करती रहती है। यही छायावादिता से आध्यात्मिकता तथा धर्म भावुकता का मेल होता है। यथार्थ में उसके जीवन के ये दो मुख्य अवलंब हैं। छायावाद में प्रकृति का उपयोग प्रायः प्रतीक की तरह होता है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए मुकुटधर जी कहते हैं कि प्राकृतिक दृश्य और घटनाएं सांकेतिक दृश्य से अदृश्य तथा अव्यक्त के प्रकाशन में सहाय पहुंचाती हैं। छायावाद के कला पक्ष पर विचार करते हुए मुकुटधर जी काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एकीकरण उसका आदर्श मानते हैं। लेखमाला के शेष दो निबंधों का एक ही शीर्षक है, हिंदी में छायावाद। इनमें छायावाद पर लगाए गए अस्पष्टता आदि आरोपों का स्पष्टीकरण करते हुए अंत में श्री मुकुटधर पांडे जी कहते हैं कि छायावाद की आवश्यकता हम इसलिए समझते हैं कि यह एक छायावाद पर पहला निबंध होने के साथ ही अत्यंत सूझबूझ भरी गंभीर समीक्षा भी है। इस निबंध का ऐतिहासिक महत्व ही नहीं बल्कि अस्थायी महत्व भी है। उस युग की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में छायावाद का सर्वप्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में मिलता है। कहीं कोई सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध लिखा है। संवाद में भाग लेने वाले कुल चार व्यक्ति हैं, ब्राह्म कन्या विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त सुशीला देवी, उनके अर्थिक किंतु लक्ष्मी के कृपा पात्र पति हर किशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और कवि सम्राट पंत जी। पहले केवल प्रथम तीन व्यक्तियों में जोशी जी के एक छायाचित्र पर बातचीत होती है, जिसे उन्होंने पंत जी की एक कविता के आधार पर बनाया है। चित्र के नाम पर बढ़िया फ्रेम में मढ़ा कोरा कागज है और उसके नीचे लिखा है छाया। हरिकिशोर बाबू के अनुसार वह निर्मल ब्रह्म की विशद छाया है। स्वयं जोशी जी ने भी उसमें किसी प्रकार अनंत की अस्पष्टता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। अंत में पंत जी आते हैं और वे भी कविता के नाम पर एक कोरा कागज प्रस्तुत करते हैं, जिसका आधार जोशी जी का वही चित्र है। हरिकिशोर बाबू के शब्दों में, यह तो वाणी की निरवता है, निस्तब्धता है, उच्छ्वास है, प्रतिभा का विलास है और अनंत का विलास है। कवि सम्राट अपने वक्तव्य में कहते हैं, छायावाद का प्रधान गुण है अस्पष्टता। भाव इतने अस्पष्ट हो जाएं कि वे कल्पना के अनंत गर्भ में लीन हो जाएं। मेरी यह सम्मति है कि शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षर अविनाशी हैं। वह तो अज्ञेय है, अनंत है, अतएव हमें भाषा को वह रूप देना चाहिए जिससे वह निरह हो जाए, वह कर्णश्रुत न होकर हृदयगम्य हो, इंद्रिय गोचर न होकर आत्मा से ग्राह्य हो। इस व्यंग्यात्मक निबंध में से एक और बात सामने आती है कि उस समय के लोग छायावाद की कविता को टैगोर स्कूल के छायाचित्रों के साथ रख कर देखते थे। यहाँ भी अभिव्यक्ति की अस्पष्टता को ही लेकर व्यंग किया गया है। इस तरह उन कवियों के लिए हिंदी छायावाद और अंग्रेजी मिस्टिसिज्म शब्द चल पड़े और इन दोनों में भी हिंदी छायावाद अधिक प्रचलित हुआ। परंतु जैसा कि सुकवि किंकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मई 1927 ईस्वी के सरस्वती में प्रकाशित आजकल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक निबंध से पता चलता है कि छायावाद और मिस्टिसिज्म पर्याय नहीं समझे जाते थे। आचार्य की समझ में नहीं आता था कि इन कवियों को मिस्टिसिज्म क्यों कहा जाता, क्योंकि पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित के त्रैभाषिक कोश के अनुसार मिस्टिक का अर्थ होता है गूढ़ार्थ, गुह्य, गुप्त, गोप्य, रहस्य आदि। इधर इन कविताओं में आचार्य द्विवेदी को आध्यात्मिक रहस्य दिखाई ही नहीं पड़ता था। रविन्द्रनाथ की कविताओं में तो वे आध्यात्मिक रहस्य मान लेते थे, परंतु हिंदी कवियों के प्रति वे शंकालु थे। इसलिए उनके अनुसार पंत, पांडे आदि की कविताएँ छायावादी ही थी। छायावाद का अर्थ ठीक ठीक न समझते हुए भी वे उन कविताओं को छायावादी मानते थे। कहते हैं, छायावाद में लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। उनके विचार से अनियोक्ति पद्धति ही छायावाद है। इस तरह आचार्य उन कविताओं और छायावाद संज्ञा में संबंध स्थापित करके दोनों में निहित अर्थ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान देने की बात है कि आचार्य द्विवेदी ने रहस्य शब्द को तो ऊपर किया, परंतु रहस्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। लगभग 2 साल बाद 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य में रहस्यवाद निबंध पुस्तककार निकाला, जिससे पता चलता है कि रहस्यवाद शब्द का प्रचलन पहले से हो चुका था। पंत का पल्लव तब तक निकल गया था। शुक्ल जी के निबंध से पता चलता है कि उनका ध्यान मुख्यतः पंत जी की उन कविताओं पर केंद्रित था जिनमें रहस्य के प्रति प्राय जिज्ञासा और कहीं कहीं लालसा व्यक्त की गई थी। उनके अनुसार अज्ञात के प्रति जिज्ञासा ही सच्ची रहस्य भावना है, परंतु उन्होंने देखा कि छायावादी कवि उस जिज्ञासा को आध्यात्मिकता का रूप दे रहे हैं। इसलिए छायावादी रहस्य भावना को उन्होंने सांप्रदायिक अथवा आध्यात्मिक रहस्यवाद समझ लिया। उन्हें छायावाद की इस आध्यात्मिकता का मूल स्रोत रविन्द्रनाथ में दिखाई पड़ा, और चूंकि रविन्द्रनाथ ब्रह्म थे और ब्राह्मणों का मत ईसाई धर्म से ज़्यादा मिलता था, इसलिए शुक्ल जी ने इन सब में एक तरह का बादरायण संबंध स्थापित कर लिया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईसाई धर्म के ही आध्यात्मिकता का ब्रह्म माध्यम से हिंदी कविता में व्यक्त हो रही है। जब मूल भाव की एक सूत्रता स्थापित हो गई तो उन्होंने छायावाद नाम के साथ भी उसका मेल मिला दिया। बुद्धि हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। उन्हें ईसाई मत में छाया अर्थ देने वाला एक फैंट समाष्टा शब्द भी मिल गया। बस फिर क्या था, उन्होंने छायावाद शब्द को उससे जोड़ दिया और साबित कर दिया कि छायावाद नाम और भाव धारा दोनों दृष्टियों से यूरोप का प्रभाव है। जिस तरह उन्होंने यूरोपीय और हिंदी आध्यात्मिकता के बीच में बंगला को माध्यम बना माना, उसी तरह उन्होंने हिंदी छायावाद और ईसाई फैंड समयता के बीच की बंगला कड़ी की भी कल्पना कर डाली और कह चले कि बंगला में भी इन कविताओं को छायावाद कहते थे। बंगला में छायावाद नामक कोई वाद या शब्द है या नहीं, इसकी छानबीन करना उनका प्रयोजन न था। उन्हें तो अपनी बात रखनी थी, रख दी, गलत हो चाहे सही। यह प्रवाद की बंगला में भी छायावाद नामक एक वाद है, बहुत दिनों बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्मूल हुआ। तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी ने छायावाद की केवल आध्यात्मिक कविताओं को अपने दृष्टि पथ में रखा और इसलिए रहस्यवाद को छायावादी कविताओं की विषय वस्तु कहा। उनका यह विचार अंत तक बना रहा। शेष को वह शैली मात्र मानते थे। जिस तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद को अनुक्ति पद्धति समझते थे, उसी तरह आचार्य शुक्ल भी उसे शैली मानते थे जिसमें अनुक्ति के अतिरिक्त भी कई प्रकार की शैलियों का समावेश था। आगे चलकर आलोचकों ने शुक्ल जी द्वारा प्रवर्तित इस द्वैतवाद को समाप्त करते हुए स्थापित किया कि वे भाव के क्षेत्र में जो रहस्यवाद है, वही शैली में लाक्षणिक वक्रता, अनुक्ति विधान, अप्रस्तुति योजना आदि रूपों में व्यक्त होता है। इस तरह इन्होंने रहस्यवादी विषय और लाक्षणिक शैली दोनों को एक कर दिया। इस समन्वित रूप को प्रसाद जी ने रहस्यवाद नाम दिया और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद। वाजपेयी जी का भी छायावाद आध्यात्मिक ही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक पुस्तक के महादेवी वर्मा शीर्षक निबंध में छायावाद की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। वाजपेयी जी की आध्यात्मिक छाया शुक्ल जी के फैंट समयता अथवा छायाभास ही है, केवल इस अंतर के साथ कि उसमें धार्मिक स्थूलता नहीं है। अपने को इस परिभाषा में बात कर वाजपेयी जी ने प्रसाद पंत निराला महादेवी की बहुत सी कविताओं को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी परिभाषा का निर्माण छायावादी कवियों को की केवल एक तरह की कविताओं के आधार पर किया। वाजपेयी जी की इस परिभाषा के पीछे शांतिप्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, नगेंद्र आदि की यह प्रचलित धारणा भी है कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद में निसंदेह सूक्ष्मता काफी है, लेकिन इस सूक्ष्मता की सीमा के कारण हम निराला और प्रसाद की उन कविताओं से वंचित रह जाते हैं जिसमें अतीव मांसलता है। इसलिए इस परिभाषा में अस्पष्ट ही अव्याप्ति दोष है। जो हो, इन तमाम बातों से मालूम होता है कि शुरू शुरू में जिस अस्पष्टता के लिए छायावाद शब्द चलाया गया, वहीं थोड़ा नाम बदलकर मुकुटधर पांडे और आचार्य शुक्ल से होती हुई नंद दुलारे वाजपेयी और नगेंद्र तक आई और अब अनेक विद्यार्थियों का संस्कार बन गई है। सुशील कुमार की अस्पष्टता, मुकुटधर पांडे की आध्यात्मिकता, आचार्य द्विवेदी का रहस्य, शुक्ल जी का आध्यात्मिक छायाभास, वाजपेयी जी का आध्यात्मिक छाया का भान और नगेंद्र का स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सब एक से ही चिंतन क्रम में हैं। छायावादी कविताओं की आलोचना प्रत्यालोचना के सिलसिले में जिस समय अंग्रेजी का मिस्टिसिज्म शब्द आया, उसके कुछ ही दिन बाद रोमांटिसिज्म शब्द आ गया। शुक्ल जी ने इसका हिंदी अनुवाद स्वच्छंदतावाद किया और सिद्ध पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि को स्वच्छंदतावादी कवि कहा। इस तरह शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद और छायावाद में अंतर किया। वे छायावाद को रोमांटिसिज्म कहने के पक्ष में नहीं थे। आश्चर्य की बात है कि प्रसाद पंत निराला को शैली इत्यादि से प्रभावित मानते हुए भी शुक्ल जी उन्हें रोमांटिक मानने से इनकार करते थे, परंतु यहाँ भी शुक्ल जी का द्वैतवाद न चल सका। कवि, आलोचक और सामान्य पाठक छायावाद और रोमांटिसिज्म का प्रयास समझने लगे। कुछ लोग शुक्ल जी द्वारा कड़े हुए स्वच्छंदतावाद को भी छायावाद का पर्याय अथवा अंग मानने लगे तथा अन्य लोग छायावाद को स्वच्छंदतावाद का द्वितीय उत्थान कहना अधिक युक्ति संगत मान चले। इस तरह प्रसाद निराला पंत तथा महादेवी की कविताओं की चर्चा के सिलसिले में अंग्रेजी के मिस्टिसिज्म और रोमांटिसिज्म तथा हिंदी के रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद शब्द आए। व्यवहार में रहस्यवाद मिस्टिसिज्म का पर्याय हो गया है और छायावाद तथा स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म के। जहाँ तक रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद शब्दों के शब्दार्थ और लोक प्रचलित भाव का संबंध है, इन तीनों में निसंदेह थोड़ा थोड़ा अंतर है। रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है तो छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता और स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा। परंतु जब युग विशेष की काव्यधारा के संबंध में इन शब्दों पर विचार किया जाता है तो रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद तीनों एक ही काव्यधारा की विविध प्रवृत्तियां मालूम होती हैं। वस्तुतः ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जिनमें एक ही जगह रहस्यवाद छायावाद और स्वच्छंदतावाद तीनों हैं। उदाहरण स्वरूप पंत के मौन निमंत्रण को ले लें। इसमें अज्ञात की जिज्ञासा होने के कारण रहस्यवाद है, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता के कारण छायावाद है और कल्पना लोक में स्वच्छंद विचरण करने के कारण स्वच्छंदतावाद भी है। जब एक कविता में इन तीनों वादों अथवा प्रवृत्तियों को अलगाना कठिन है तो पूरी काव्यधार की क्या बात। इसलिए उचित तो यही मालूम होता है कि जिस तरह अन्य साहित्यों में अनेक प्रवृत्तियों के पुंज रोमांटिक काव्य को एक संज्ञा रोमांटिसिज्म दी गई है, उसी तरह अनेक प्रवृत्तियों के पुंज छायावादी काव्य को भी एक ही नाम देना चाहिए। कहना न होगा कि यह नाम छायावाद ही हो सकता है। छायावाद नाम सबसे पुराना होने के साथ ही प्रसाद निराला पंत और महादेवी की कविता के लिए रूढ़ भी हो गया है। ऐसी हालत में छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद निराला पंत महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 1936 के बीच लिखी गई हैं। छायावाद की मनमानी परिभाषा करने की अपेक्षा इसके ऐतिहासिक और व्यवहारिक अर्थ को स्वीकार करना अधिक वैज्ञानिक है। अपनी परिभाषा को पहले ही से संकुचित करके फिर यह निर्णय देना कि पंत शुद्ध छायावादी हैं और दूसरे नहीं, अथवा महादेवी शुद्ध छायावादी हैं अन्य नहीं, अपनी सीमा प्रदर्शित करना है। अपनी संकुचित परिभाषा के ही कारण कुछ लोग पंत की रचनाओं में भी केवल पल्लव और पल्लव में भी कुछ ही कविताओं को ही छायावाद के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इस तरह की बातें आत्मनिष्ठ दृष्टि का परिणाम है। वस्तुतः छायावादी कविताओं की परिभाषा का निश्चय उन कविताओं में पाई जाने वाली सभी प्रवृत्तियों के आधार पर होना चाहिए। और यहाँ हमें यह न भूलना चाहिए कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रम से विकास होता गया, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। छायावाद नामकरण जिन कविताओं के आधार पर हुआ था, वैसी ही कविताएँ अगले वर्षों में भी नहीं होती रहीं, बल्कि उनकी विषय वस्तु तथा रूप विन्यास का विस्तार हुआ। इसीलिए छायावाद के आरंभिक अर्थ में भी क्रमशः व्यापकता का आना स्वाभाविक है।